हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 20 और 21। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्वैवमे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया येनी च पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेशवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरुष्ठा पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वाहं न जाने। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्प पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। यहाँ पर शास्त्र हमें ये बता रहा है कि आखिर मनुष्य जीवन के लक्ष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन को हमें किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ज्यादा कीमती वस्तु है वो है समय। अगर एक क्षण भी समय का बीत जाता है तो करोड़ों रुपए की दौलत देकर भी हम उसे पुनः वापस नहीं ला सकते। इसलिए जैसे हमें पहले श्लोक नंबर 17 में बताया आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यार्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया। यूं तो सूर्य उदय और अस्त होते ही साथ हमारी आयु को क्षीण कर लेता है, लेकिन उन व्यक्तियों की तस्यार्ते यत्क्षणो नीत उनकी आयु कभी भी क्षीण नहीं होती है, उनका समय कभी भी समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है या वेस्ट नहीं होता है। जो उत्तम श्लोक वार्ताया जो भगवान श्री कृष्ण जो उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुति होती है ऐसे भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती है। और अगर आप भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते हो, भगवान की चर्चा को बोलते नहीं हो, भगवान की कीर्ति का गुणगान नहीं करते हो, फिर वो जीना जो है वो तो मनुष्य का जीना हो ही नहीं सकता। ऐसे तो आगे बताया तरवह किम न जीवंती बसरा किम न श्वसंत्युत न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। यूं तो जीते वृक्ष भी हैं हजारों साल तक, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते तो क्या लाभ है उनके जीने का। यूं तो सांस लेती है लोहार की ढोंकनी भी तो क्या वो मनुष्य बन गई। यूं तो बहुत सारे पशु हम देखते हैं खाते हैं पीते हैं वीर्यपात करते हैं बच्चे संतान उत्पन्न करते हैं तो क्या वो मनुष्य है। नहीं, मनुष्य भी यदि इसी तरह से जी रहा है तो फिर वो इन पशु प्राणियों से बढ़कर नहीं है। और वो मनुष्य जो कि ऐसे लोग जो भौतिक लाभ के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और भगवत भक्तों की प्रशंसा नहीं करते, वो कैसे हैं? उनके विषय में बताया, षड्विद वराहो श्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशु नयत करण पथोपेतो जातु नाम गदाधर। श्वेत गरा होष्ट खरे यानी कुत्तों सुअरों ऊंटों या गधों जैसे पुरुष ही संस्तुतः पुरुषः पशु ऐसे पशुओं जैसे पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, नयत करण पथोपेते जो कभी भी भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, वो जातु नाम गदाधर वो जो समस्त बुराइयों का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते, उनका तो कोई भी महान भक्त उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि वो स्वयं भी मनुष्य नहीं है, जानवरों की तरह है जो ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद आज हमें यहाँ श्रीमद् भागवतम से पता चल रहा है कि आखिर जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी है ना, हमारा जो शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सार्थकता क्या है कि वो हम भगवान की सेवा में लगाएं। क्योंकि ये शरीर भगवान ने हमें इसीलिए दिया है कि हम इसके द्वारा भगवान की भक्ति करें, और भक्ति तभी संभव है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हों और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करे। जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय भोग में लगी रहेंगी, कर्ण केवल अपने इंद्रियां केवल विषयों में लगी रहेंगी, कर्ण अपने विषयों की ओर आकर्षित होंगे, नेत्र अपने विषयों की तरफ आकर्षित होंगे, जीवा अपनी टेस्ट के विषय की तरफ है ना आकर्षित होगी, तो फिर हम कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। वो लोग धूर्त हैं जो कहते हैं कि हमारे विषयों की तरफ भले ही हमारी इंद्रियां लगी हुई हों फिर भी हम मन से भगवान की भक्ति करते हैं, वो संभव ही नहीं है। इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मातम इंद्रियाण यादो नियम य भरतर्षभ, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को रोकना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और जब इंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा में लगेंगी ना, तो धीरे 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 मन भी लगेगा, क्योंकि जब इंद्रियां जो है वो जिस जिस विषय की ओर जाती है ना, तो मन उस विषय की ओर टच हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 67 में भगवान बहुत ही सुंदर सिद्धांत देते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर नावमिवाम भसे। जिस तरह से प्रचंड वायु पानी में तैरती हुई नाव को दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियां यदि विचरण करती रहेंगी तो बुद्धि हरण हो जाएगी। तो भगवान इसलिए कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए आप क्या करो, तस्माध्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः, अपने इंद्रियों को सबसे पहले निगृहीतन करो, उसको कंट्रोल करो। और जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत हो जाएंगी और भगवान की सेवा में लगेंगी ना, तभी हम भगवान के अंदर अपने मन को लगा सकते हैं, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब इंद्रियां ही नहीं लगेंगी, और इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है जानते हो? सबसे महत्वपूर्ण दो इंद्रियां हैं हमारी, और उसमें से पहली है हमारी श्रवण इंद्रिया। हमारे जो कान है ना, वो जैसे ही श्रवण करते हैं मन उसके विषय में आकर्षित, देख लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं, किसी चीज को आप देखो तब वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। जैसे आप अगर मार्केट में जाओगे ना, तो आप हजारों चीजों को देखोगे, लेकिन जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा ना जिसके महत्व को, वो वस्तु आपको आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन आपको पता होगा अगर आपने उसके विषय में सुना होगा ना कभी कि ये वस्तु खाने से इतना लाभ मिलता है या फिर ये इससे होता है, तो फिर वो वस्तु आपको स्वतः आकर्षित करेगी। इसलिए सबसे पहले अपने कर्णों को है ना कंट्रोल करके, उनको भौतिक वस्तुओं को ना सुनाकर भगवान की ओर आकर्षित करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो हमारा इंद्रिय है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो कौन सा है? जिह्वा। ये जिह्वा ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। ये जब भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करती है तो ये कर्म इंद्रिय हो जाती है। जब भौतिक वस्तुओं को बोलती है, भौतिक बातों को बोलती है, तो ये कर्म इंद्रिय हो जाती है। और जब टेस्ट करती है तो ज्ञान इंद्रिय हो जाती है। और ये जिह्वा कंट्रोल हो जाए ना, ये यदि भगवान के गुणगान करना सीख जाए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना सीख जाए, यदि ये भगवान के भक्तों की प्रशंसा करना सीख जाए, भगवान के अर्पण किए हुए प्रसाद को खाना सीख जाए ना, तो सारी इंद्रियां आहिस्ता आहिस्ता स्वतः कंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि कर्ण जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते और जिह्वा जो भगवान की गुणगान नहीं करती है, उनका होना हमारे लिए लाभप्रद नहीं है बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हानि है ऐसे कानों का जो कि भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, और ऐसे जिह्वा का जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करते हैं। अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। बिलीवतोरु क्रम विक्रमान्ये न श्रावतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदा दुरिकेव सूत न चोपगायत युरुखाय गाथा। बिलीवतोरु क्रम विक्रमान्ये न श्रावतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदा दुरिकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथा। बिलीवतोरु क्रम विक्रमान्ये न श्रावतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदा दुरुकेव सूत न चोपगायत युरुगाय गाथा। शब्दार्थ बिले, बिल कहते हैं सांप जिसके अंदर रहते हैं ना, सांप के घर को बोलते हैं बिल। बत्तों का मतलब होता है सदृश, वो तो सांप के बिल के बराबर है। उरुक्रम बोलते हैं अद्भुत कार्य करने वाले भगवान, भगवान का एक नाम है उरुक्रम, यानी वो ऐसे कार्य करते हैं जो वास्तव में श्रवण करने के योग्य हैं। भौतिक जगत में जो भी कार्य, जो भी शौर्यवान होता है, हम सोचते हैं इसका फेम है, उसके बारे में सुनते हैं ना, वो सुनते हैं ना, जो उनके कान क्या है, सांप के बिलों के समान है। क्यों? क्योंकि उरुक्रम विक्रमान, विक्रमान वो भगवान के शौर्य के गाथाओं को नहीं सुनते हैं। न श्रवति कर्णपुटे नरस्य, यहाँ पर साफ शब्द आया है नरस्य। नरस्य मतलब मनुष्य, मनुष्य के कान जो हैं वो भौतिक सांसारिक कूड़ा करकट अंदर में डालने के लिए नहीं मिले, भगवान ने नहीं दिए हैं। भगवान ने ये कान इसलिए दिए हैं ताकि इन कानों के द्वारा हम भगवान की महिमा का श्रवण करें, भगवान के शौर्य का श्रवण करें, ना कि भौतिक जो कीड़े मकोड़े हैं उनके विषय में श्रवण करें। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है बिले बतोरुर क्रम विक्रमान्ये, जो भगवान के शौर्य के गाथाओं को न श्रवती नहीं सुनते हैं, कर्ण पुटे ऐसे कर्ण के जो छिद्र हैं वो क्या हैं? बिल हैं, सांपों के बिल हैं। क्योंकि सांपों के बिल जहरीले होते ना, उसके अंदर हर कोई कचरा डालता है ताकि वो भर जाए,
है ना, ताकि इसके अंदर सांप नहीं हो, अगर है तो भी निकले नहीं। उसी तरह से हमारे कान जो है ना, उसके अंदर कचरा जा रहा है, भौतिक कचरा जा रहा है। और यहां से अगर हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं तो भौतिक सारी वस्तुएं जो हैं वो गंदगी है जो हमारे कान में जा रही है, तो वो हमारे कान कैसे बन जाते हैं, सांपों के बिल की तरह। और आगे जो हमारी ये जिह्वा है ना, जो सारा दिन टर्टर करती रहती है, उसके बाद में बता रहे हैं, जिह्वा सतीदार दुरी की वसूत। हे सूत गोस्वामी, ये जो जिह्वा है ना वो असती है। जिह्वा असती, असती का मतलब होता है वो स्त्री जो अपने पति के अतिरिक्त किसी और से संबंध जोड़ती है। उसी तरह से जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए दी गई है वो वैश्या मानी जाती है यदि वो भगवान के अतिरिक्त किसी और का गुणगान करती है। यदि वो कृष्ण, असती का मतलब होता है वैश्या, तो वो जिह्वा वैश्या के समान है और वो सारा दिन टटर टटर करती रहती है। दार दूरी के, इसका मतलब है मेंढक की तरह। वो क्यों टर्टर करती रहती है, क्योंकि ये काल जो है वो एक दिन आकर, जिस तरह मेंढक टर्टर करता रहता है ना, उसी तरह से ये जिह्वा सारा दिन बोलती रहती है। तो ये समय का अपव्यय है, समय का बहुत बड़ा वेस्ट है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, तो यदि भगवान की कथा नहीं गाएंगे तो ये काल जो है वो हमें दबोच लेगा। और जिस तरह सांप मेंढक को खा जाता है, उसी तरह हमारी भी आयु क्षीण हो जाएगी। तो इसलिए कहा, जिह्वा सतीदा दुरी के वसूत। वो जिह्वा, हे सूत गोस्वामी, वो जो जिह्वा मेंढक की तरह है या असती वेश्या की तरह है, जो नाचो उपगायत, उपगायत का मतलब होता है जोर जोर से उच्चारण करना, जोर जोर से जो नाचो उपगायत, जो नहीं गाती है, तेजी से उच्चारण नहीं करती है भगवान के, उरु गाय गाथा, भगवान की गाथाओं को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के शब्दों को, भगवान के महान पवित्र नामों का उच्चारण नहीं करती है वो जिह्वा, तो मेंढक की तरह है। और वो असती वेश्या की तरह है, क्योंकि अपने भगवान को छोड़कर वो कुछ और ही बोलती रहती है। अनुवाद, जिसने भगवान की शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल है और जीव मानो मेंढक की जीभ है। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्ति भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लग जाता है। शत प्रतिशत मतलब मन, क्रम और वचन के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो। इंद्रियों के द्वारा जब भगवान की सेवा की जाती है और वह अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहेंगी, तब तक इंद्रियां तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही मानना चाहिए। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। भगवान अपनी समस्त इंद्रियों समेत परमेश्वर और सेवक जो भगवान का अंश है, वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत शुद्ध उपयोग है। इंद्रियों के द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जिस तरह से कोई एक इलेक्ट्रिसिटी किसी और दूसरे उसमें डाल दी जाती है, उस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं है कि गुरु अपने अंदर से कोई चमत्कार निकालेगा और शिष्य के अंदर डाल देगा। नहीं, गुरु उपदेश देगा और यदि शिष्य उन उपदेशों को अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करेगा तभी वो भगवान का भक्त बनेगा। और श्री प्रभुपाद जी आगे देखे थे, आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचारक करने वाले मूर्खतावश दिखावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के मध्य विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव से तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वह महान देह को तर्क द्वारा समझ सके। आगे शिला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते हैं तो यह निश्चित ही है कि उसके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। अतएव श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी जाती है, अतएव वे सदैव बोलते तो रहते हैं परंतु व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सोचे समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर में लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोलें जिससे लोग सुन सकें। मेंढक उच्च स्वर से टर्राते रहते हैं जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असति शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। असति का अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती है जो किसी स्त्री की स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार वह जीभ जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने के लिए दी गई है वो तब वेश्या मानी जाती है यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, 12 परम्पट कीरीट जुष्टम् अप्युत्तमांगम् ननामेन मुकुंदम् शावो करौना कुरुते सपर्याम् हरे लसत्कांचन कंकणौ वा। 12 परम्पट कीरीट जुष्टम् अप्युत्तमांगम् ननामेन मुकुंदम् शावो करौना कुरुते सपर्याम् हरे लसत्का चनकं कणोवा। 12 परम्पाट कीरीट जुष्टम् अप्युत्तम तमांगम ननामेन मुकुंदम शावो करौना कुरुते सपर्याम हरे लसत्का चन कंकणों वा। बार, भार कहते हैं बहुत बड़ा भोजा है। भारम परम, ये बहुत परम बहुत ज्यादा भारी भोजा है। पट्ट किरीट जुष्टम, भले ही वो बहुत, पट्ट कहते हैं रेशमी, किरीट कहते हैं पगड़ी को, जुष्टम मतलब उससे सजा हुआ है। भले ही वो बहुत ही सुंदर रेशमी पगड़ी से सजा हुआ है, उत्तमांग जो हमारा सर है ना, वो भले ही उसको हम कितने ही कीमती पगड़ी पहना है और बहुत अच्छे मुकुट से सजाएं, लेकिन न नमेन मुकुंदम, मुकुंद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जो हम सब जीवों का उद्धार करने वाले हैं। मनुष्य का जन्म मिला है भगवान की भक्ति करके, अपने इस आत्मा का उद्धार करने के लिए, लेकिन वो सिर जो कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, न नमेन मुकुंदम, वो तो जीव के ऊपर भार है, बहुत बड़ा भोजा है हमारे सर पर, उस सर को तो काट कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवान की ओर नहीं लेके जा रहा है, भगवान की भक्ति नहीं जिससे हो रही है, जो भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए भोजा है। और आगे कहते हैं, शावो करो ना कुरुते सपरिया, करो करो कहते हाथों को, यानी ये जो दो हाथ हैं, न कुरुते सपरियाम हरे, सपरियाम कहते हैं पूजा, अगर इन हाथों के द्वारा हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान के पवित्र नाम की माला नहीं फेरते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की आरती नहीं करते, तो शावव, शावव मतलब वो मृतिक शरीर है, मरे हुए शरीर की जैसे देह, डेड बॉडी होती है ना, वैसे है वो हाथ, भले ही लसत कांचन कंकणों वा, भले लसत कहते हैं बहुत ही चमचमाते हुए, कांचन मतलब बहुत ही सोने के मोटे मोटे चमचमाते हुए कंगन भले उन हाथों में पहने हुए हों, लेकिन वो हाथ यदि भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो वो तो मुर्दे के समान है, उन हाथों का कोई भी लाभ नहीं है यदि वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। अनुवाद, शरीर का ऊपरी भाग यानी मस्तक भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी भोजन के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे हुए नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त यानी महाभागवत, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लीन लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं, अतएव वे द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपर्युक्त हैं, और जैसा कि ऊपर के श्लोकों में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए द्वितीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अर्चा विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत ही धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो, भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समान नतमस्तक हो जाएं। मंदिर में भगवान के पूजनीय स्वरूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना हुआ ना माने, क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं, जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। श्रवण वेदी से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती है। अतीव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को श्रीमद्भागवतम, श्रीमद्भगवद्गीता जैसे प्रामाणिक स्रोत्रों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनजान रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भव सागर में और अधिक डूबोने में ही सहायक बनेगा। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की उपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है तो और जब उसे मस्तिष्क शून्यता यानी सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी आ घेरती है तो वह ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूबता जाता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के भोज के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यह सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय ना मिले तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। ओडिशा के अत्यंत ही शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र यद्यपि राजा के उत्तरदायित्व के भारी बोझे के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह ईश चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में घुस ना पाया। अंत में महाराजा प्रताप रुद्र की ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंगन क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तव में भक्तों, धन तो आने जाने वस्तु है। भले ही हमारे पास कितना ही धन क्यों न हो, कितने ही ऐश्वर्य हो, कितना ही लग्जरियस लाइफ हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भगवान की कृपा के बगैर भी आनंद से हैं। क्योंकि जीव को जब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। तो भले कितना ही सुख प्राप्त हो जाए, कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा धन आ जाता है, जब सुख आ जाता है तो फिर भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम हमें बता रही है, भले ही आप कितने बड़े राजा क्यों न बन जाओ, लेकिन अगर आप अपने मस्तक को भगवान के सामने नहीं झुकाते हो तो वही मस्तक जो है वो हमें बारंबार भव सागर में डूबने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि भारी बोझा है वो सिर उस देह के ऊपर जो भगवान के सामने झुकता नहीं है। और हमारे पास भले ही कितने ही हीरे जवाहरात हो, कितने ही सोने चांदी के कंगन हो, यदि हमने हाथों से हम भगवान की सेवा, कुछ लोगों का लोग जो होते हैं वो भगवान की सेवा भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम इतने वो धनी होते हैं और वो सारा काम जो है वो दूसरों से करवाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा, ये विग्रह जो होती है साक्षात भगवान का स्वरूप होती है। हमारे पास चाहे कितना ही धन क्यों ना आ जाए, हमें भगवान के मंदिर की सफाई करनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या लाभ है हमारे इन सुंदर मनुष्य जीवन का। क्योंकि आगे कहते हैं, बरहाई देते नयने नराणा लिंगानि विश्व ननिरीक्षितो ये पादौ निरांतो द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरयो। बर्हाई ते नयने नराणां लिंगानि विश्व ननिरीक्षितो ये पादौ निरांतो द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यौ। बर्हाई ते नयने नराणां लिंगानि विश्व ननिरीक्षते तो लिंगानि विश्व ननिरीक्षतो ये पादौ नृणान्तो द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरयो। बरहाइते, बरहाइते यानी मोर पंख जो होता है ना, मोर का पंख होता है वो निर्जीव होता है, लेकिन उसके ऊपर एक आंख जैसी डिजाइन बनी हुई होती है, वो आंख देख नहीं सकती है। उसी तरह से यहाँ पर बताया जा, बरहाइते ते नयने निराणा, बार बार मनुष्य को बताया जाता है कि हे मनुष्य, तुम्हें जो भगवान ने सुंदर आंखें दी है ना, वो केवल भौतिक वस्तुओं को देखने के लिए नहीं दी है, केवल आईलाइनर या आईशैडोस लगाने के लिए आंखें नहीं मिली हैं, बल्कि लिंगानि विश्व निरीक्षितो। लिंगानि यानी स्वरूप किसका, भगवान का, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को निहारने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान ने ये नेत्र दिए। लेकिन न निरीक्षतो ये, निरीक्षतो मतलब जो दर्शन नहीं करते हैं भगवान के, लिंगानि विष्णु न निरीक्षते, जो भगवान के स्वरूप को नहीं देखती हैं, भगवान के दर्शन कर इच्छा नहीं होती है। लोग आते हैं मंदिरों के, मंदिर के साइड से गुजर जाते हैं, मार्केटों में चले जाते हैं, मंदिर में भगवान बैठे हुए, इच्छा होनी चाहिए, हृदय के अंदर तड़प होनी चाहिए कि मुझे भगवान के दर्शन कर। कभी कभी ऐसा होता है, कभी बहुत दिन हो जाए ना मंदिर जाने का अवसर ना मिले, तो फिर हृदय के अंदर तड़प होनी चाहिए कि कितने दिन हो गए मैंने गोपीनाथ के दर्शन नहीं किए, कितना समय हो गया वृंदावन चंद्र ने मुझे दर्शन नहीं दिए। हृदय के अंदर तड़प होनी चाहिए। यदि हृदय के अंदर भगवान के स्वरूप को देखने के लिए तड़प नहीं है और सारा दिन इन आंखों से हम भौतिक वस्तुओं को ही देखते रहते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसे मनुष्य की आंखें तो मोर पंख की तरह है, बस दिखती है आंखों जैसी, वरना वो अपना रियल कार्य नहीं कर रही है। उनका वास्तविक लक्ष्य आंखों की, वास्तविक सदुपयोग ये है कि इन आंखों से हम भगवान के दर्शन करें। लोग कितना समय तक हीरोज के, हीरोइंस के पोस्टर्स देखते हैं, फोटोज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और मतलब उनका देखकर हमारी, हमारा कभी कल्याण नहीं होगा, बल्कि और भी हम विषय वासनाओं से गिरेंगे। इसी आंखों का सदुपयोग करना चाहिए। सुंदर ही वस्तु अच्छी लगती है ना संसार में, और संसार के समस्त संसारों में सबसे सुंदर यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान का एक एक अंग जो है वो देखने योग्य है। अपने नेत्रों को सफल करना चाहिए, सदैव नेत्रों को प्यास होनी चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। ने ये जो गोपियां होती ना, वो भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी तरसती थी, उनको ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी ने हमारी आंखों को सही ने बनाया, ब्रह्मा ने ये आंखों के ऊपर पलकें क्यों दे दी, क्योंकि ये पलकें जब झपकती है ना तो उस समय के लिए कृष्ण अदृश्य होते हैं और वो एक क्षण हमारे लिए युगों के समान हो जाता है, क्योंकि वो समय जो है वो कृष्ण के दर्शनों में बाधा बनता है। तो वास्तव में ये नेत्र जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए बने। यदि हम इन नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं करते तब बढ़ाई दे दे नयने नारायण, उस मनुष्य की आंखें वास्तव में आंखें नहीं है। और ये जो पांव है ना, सारा दिन सारा जीवन जीव उन पांव से चलता रहता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, दो पांव पर चलना सीखते हैं ना, जब हम उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उस समय से लेकर जब तक उनकी शक्ति समाप्त नहीं होती है, गिरते नहीं है बिस्तर पर, तब तक वो चलते रहते हैं। अभी छोटा बच्चा भी होता है ना, तभी माँ क्या बोलती है, अब बस इसने चलना शुरू किया है ना, सारा दिन चलता रहता है। ये मनुष्य की फितरत है, नेचुरली वो सदैव चलता रहता है। लेकिन कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए इस चरणों को नहीं यूज करते हो। वो जिस तरह से वृक्ष के तने होते हैं ना, वो भी तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने सफर को तेरे, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, भले ही कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं। उसी तरह से हमारे जीवन का सफर जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। पादो नृणम तो ध्रुव जन्म भाजो, यानी वो ध्रुव जन्म यानी वृक्ष से उत्पन्न भाजो उसके सदृश हैं, जैसे वृक्ष के तने होते हैं ना, उनके सदृश होते हैं वो प्रेर, जो कि क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरैर्यो हरैर्यो, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के उन पवित्र स्थान लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए, पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए यदि हम अपने पैरों को नहीं यूज करते हैं तो वो पांव बिल्कुल बेकार है, कोई कार्य नहीं। भले पूरा जीवन वो चलते रहेंगे, कभी भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वास्तविक सार्थकता हमारे पैरों की क्या है कि हम भगवान के मंदिर के दर्शन करने जाएं, भगवान के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने जाएं, ब्रजभूमि वृंदावन धाम के दर्शन करने जाएं, मायापुर नवदीप धाम के दर्शन करने जाएं, गंगा मैया यमुना मैया के दर्शन करने के लिए जाएं, हर वो स्थान जहां पर भगवान ने लीला की है, जहां पर भगवान ने वस्त्र चुराए, जहां पर भगवान ने जन्म लिया, जहां पर भगवान ने कालिया को दहन किया, जहां पर भगवान ने रासलीला रचाई, भगवान के उन स्थानों का दर्शन करने के लिए यदि हम जाते हैं ना तो हमारे जीवन सफल हो जाते, क्योंकि उन स्थानों में अब भी वो पवित्रता है। और जब उन स्थानों का दर्शन करते हैं नेत्रों के साथ चरणों के साथ चलकर उधर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल होता है। अनुवाद देखिए, जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों यानी उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती हैं, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं जहां पर भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा जोर देकर संस्तुत की गई है। यहाँ पर ये बात हमें समझने की है, हम में से अधिकतर लोग क्या हैं, गृहस्थ हैं, और हमें क्या करना चाहिए, अर्चा विग्रह की उपासना करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु की विग्रह की, यथा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे रूपों की, या नरसिंह विराहा गौर निताय मत्स्य कूर्म शालिग्राम शिला या भगवान के किसी भी अन्य रूप यथा त्रिविक्रम केशव अच्युत वसुदेव नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूपों जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में दी गई है उनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगला आरती का निरंजन अर्चन पूजन कीर्तन श्रृंगार भोग वैकाली संध्या आरती का पाठ भोग रात्रि का और शयन आरती का इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगे रहें। यानी सारे गृहस्थ के जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, जैसे ही बच्चे 12 साल के हो ना उनको गुरु महाराज से दीक्षा दिलानी चाहिए, फिर उनका नियम होना चाहिए, वो सारी सेवाएं जो है वो भगवान की मंगला आरती संध्या आरती श्रृंगार कीर्तन पूजा सारा भोग अर्पण करना ये सब करना चाहिए और इसी के द्वारा अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करना चाहिए। हम सोचते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये कब करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये समय ही है। ये ब्रह्मचर्य अवस्था जो होती है ना वो वास्तव में अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना तो अवश्य ही वो किसी न किसी गलत कार्य में लग जाएंगी। इंद्रियां यदि भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो कोई भौतिक कार्य में लगेंगी। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक होती है। यहाँ पर अर्चन विधि के बारे में कि जब तक हम अपने शरीर के साथ भगवान की अर्चना नहीं करेंगे, भले कितना ही पढ़ लें भगवान से प्रेम करना चाहिए, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन उससे क्या लाभ यदि हम भगवान की सेवा में अपने आप को प्रेरित करके भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण नहीं करेंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक और पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्त का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाता है। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन मृत्यु के चुंगल से उबार सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों की व्याख्या की है और इस श्लोक में उसे इस प्रकार से बताया है। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन निर्मजनार्थ युक्तस्य भक्ता तनियुञ्जतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री विग्रहारा धरनित्य नाना श्रृंगार तन्मन दिर मार्जनादेशो, यानी श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपर्युक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जनादि मंदिर को मार्जन अथवा मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करें। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक युक्तस्य भक्तांच चनियुञ्जतोऽपि, ऐसे गुरु महाराज जो शुद्ध भक्त होते ना वो स्वयं भी भगवान की सेवा करते हैं, वो स्वयं भी शास्त्रों के अनुसार, जैसे शास्त्र हमें बताता है कि अपने हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपने आंखों से भगवान के दर्शन करने चाहिए, चरणों से भगवान के यात्रा करनी चाहिए और अपने मस्तक को भगवान के सामने झुकाना चाहिए। गुरु जो शुद्ध गुरु होता है ना वो स्वयं भी भगवान की सेवा करता है और अपने भक्तों को भी यही सिखाता है, अपने शिष्यों को भी यही सिखाता है। वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा नहीं करता है, जो भगवान के सामने सिर को नहीं झुकाता है, जो भगवान की सेवा आरती पूजन नहीं करता, उसको कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि ऐसा ही गुरु जो है वो हमें शास्त्रों के अनुसार चलाकर हमारे जीवन को सार्थक करा सकता है। इसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत ही अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों के आध्यात्मिक उपदेशों द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा वस्त्र रेडियो द्वारा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले बद्धे कामुक गीतों से बच सकता है। अगर भगवान के शब्दों की ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा और ये भगवान के शब्दों की जो वाइब्रेशन है वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा तक को पवित्र कर देगी, फिर भौतिक ये जो जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि यदि इनमें हमारा मन लगेगा तो फिर सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले बद्धे कामों गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां पर उपर्युक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हैं। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं, जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था होती रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा कि राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशन अनुसार करते थे और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज उठाएं। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटी की भावना से ना करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे, पीछे जाना। अतएव यह उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दे दी है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित स्थानों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई भी ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर रीति से हमारे मनुष्य जीवन को, हमारे शरीर को, मन कर्म वाणी के साथ किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसका सबसे सुंदर उपाय क्या है कि हमें किसी शुद्ध भक्त की शरण में रहकर ये सब सीखना चाहिए। शुद्ध गुरु के माध्यम से हमें हर एक कार्य भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कोई शुद्ध गुरु से जब हमारा संबंध हो जाता है ना तो स्वतः भक्ति करना सुगम हो जाता है। वरना तो हम अपनी ओर से, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जाते हैं यात्राओं में लेकिन एज अ पिकनिक वो वृंदावन की में जाके घूम के आ जाते तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। जब तक हम शुद्ध भक्तों से उन जगहों की महिमा नहीं समझेंगे और जब तक हृदय के अंदर उन जगहों के लिए, उन स्थानों के लिए प्रेम नहीं होगा तो फिर क्या लाभ। उसी तरह से विग्रह रखी होगी, कोई लोग सोचते हैं हाँ भाई बहुत अच्छी लग रही, लेकिन उसमें जब भगवत भाव नहीं आता है, जब प्रेम का संबंध नहीं है तो फिर क्या लाभ है दर्शन करने का। तो फिर हमें अवश्य हृदय के साथ ही इच्छा करनी चाहिए कि हमें किसी शुद्ध गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, इसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी शुद्ध गुरु को स्वीकार नहीं करते ना, तो हमारी सारी जो पूजा होती है वो सब अभी तक फलीभूत नहीं होती है। फलीभूत क्या मतलब है कि वो जाया तो नहीं होता है। आप जो नाम जप करते हो, आप जो शिव विग्रह की सेवा करते हो, वो जाया नहीं होती है, वो सब आपकी है अमानत के तौर पर। लेकिन उसका वास्तविक लाभ क्या है कि उससे हमें भगवत प्राप्ति हो। लेकिन भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होती है जब तक कि किसी शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो। तो शुद्ध गुरु को प्राप्त करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि कोई शुद्ध गुरु हमें स्वीकार करे और वो हमारा हाथ पकड़कर हमें भगवान की शरण में ले जाए। और आज तो बहुत ही सरल है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज आसानी से इस्कॉन से जुड़ सकते हैं और इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे शुद्ध गुरु हैं जो हमें अना भगवत प्राप्ति करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी शुद्ध गुरु से शिक्षा लें, दीक्षा लें और अपने इस मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में लगाकर इसका सदुपयोग करें और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।